તારીખ 25/6/1997 સમ્યક્ત્વના આર્ટિકલ ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન, સળંગ પ્રવચન નંબર 270.
પરમાર્થ નિર્વિકલ્પ સમીર દર્શનના કારણભૂત મુમુક્ષુની ભૂમિકાના જે પ્રકાર છે પરિણામમાં, એને પણ કૃપાળુ દેવે એ ભૂમિકાનું સમ્યક્ત્વ કર્યું છે. સમ્યક્ત્વ નહીં હોવા છતાં સમ્યક્ત્વ કહ્યું, કેમ એ સમ્યક્ત્વનું ખાસ કારણ છે અથવા જે પરિણામ થયા વિના સમ્યક્ત્વ થતું નથી અને જે પરિણામ થવાથી અવશ્ય સમ્યક્ત્વ થાય છે, એવું સમ્યક્ત્વના અંગભૂત કારણ જોઈને તેને તે ભૂમિકાનું સમ્યક્ત્વ થયું તે ઉચિત છે. ભલે કારણના કાર્યનો ઉપચાર છે તો પણ એનું મહત્વ દર્શાવવા અર્થે એમ કહેવું તે ઉચિત છે. એમાં આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્રની 17મી ગાથા અનુસાર 751માં પહેલું સમતુલ્ય કહ્યું છે, એ સજીવન મૂર્તિની ઓળખાણ. સજીવન મૂર્તિની ઓળખાણ પાછળ એમ કહેવાય છે કે જે જીવંત હોય એટલે અત્યારે વિદ્યમાન હોય અને પ્રત્યક્ષ હોય એને સજીવન મૂર્તિ કહેવાય છે. અભિપ્રાય છે એની પાસે પૂર્વકાળમાં ભૂતકાળમાં તીર્થંકર આદિ અનેક મહાપુરુષો થઈ ગયા, અનંત મહાપુરુષો થઈ ગયા, પણ ઓળખાણ ભૂતકાળમાં થયેલા મહાત્માઓની થઈ શકતી નથી, એવી વસ્તુ સ્થિતિ છે. આત્મા અરૂપી હૈ ફિર ભી મૂર્તિ ભૌતિક પદાર્થ ઇન્દ્રિય જ્ઞાન સુધી દિખાઈ દેતા હૈ, અમૂર્તિક પદાર્થ ઇન્દ્રિય જ્ઞાન સુધી નહીં દિખાઈ દેતા. ઇન્દ્રિય જ્ઞાન સુધી ઇસકા કુછ ખ્યાલ આયે, પહેચાન આયે તો અમૂર્ત ભી મૂર્ત હો ગયા, અમૂર્ત વિષય ભી મૂર્ત હો ગયા. જૈસે અપન વ્યવહાર મેં કુછ બોલ સકતે હૈ, એસા કિસી કી યોગ્યતા કો હમ અચ્છી તરહ જાનતે હૈ, જમીન પેર સે માથા તક ઉસકો રોમ રોમ કો જાનતે હૈ, તો ક્યા બોલેંગે અપન કે ઇસ મૂર્તિ કો હમ બરાબર જાનતે હૈ. યોગ્યતા તો અરૂપી હૈ, યોગ્યતા તો અરૂપી હૈ, લેકિન બોલેંગે એસે કે ઇસ મૂર્તિ કો બરાબર જાનતે હૈ, યાની મૂર્ત રૂપ સે જૈસે જાના જાય વૈસે જાનને કી પરિસ્થિતિ કો દેખ કરકે ઉસકો બોલતે હૈ મૂર્તિ. આત્મા જો જીવંત પદાર્થ હૈ, ઓ જીવંત પદાર્થ અરૂપી હૈ, ફિર ભી ઉસકી પહેચાન હુઈ તો ઓ પહેચાન કો પહેચાન કો સજીવન મૂર્તિ કી પહેચાન દેને મેં આતી હૈ. ઉસમે આશય વો હૈ કે જો સજીવન નહીં હૈ યાને ભૂતકાળ મેં જિસકા દેહાંત હો ગયા વો પહેચાના નહીં જાતા, પહેચાનને કે લીએ પ્રત્યક્ષ ચાહીએ. પરિણતિ સે પહેચાના હૈ, જિસકો પહેચાનના હૈ ઉસકો इसकी परिणति से पहचानना है, वचन से नहीं पहचानना, फोटो से भी नहीं पहचानने का, और वीडियो फिल्म से भी नहीं पहचानने का। जीवंत चाहिए, वीडियो फिल्म में जीवंत नहीं है। जीवंत जैसे सब बातें होने पर भी जीवंत नहीं है, इसलिए यहां से पहचान नहीं आते। दिया से दिया जलाया जाता, दिया का पिक्चर कितना भी सुंदर हो एग्जैक्ट लगे कि दिया ही है, और मामूली दिया से सुंदर भी पिक्चर हो उससे दिया नहीं जलाया जाता है, उससे भी दिया नहीं जलाया जाता, ठीक है ना। वीडियो का में जो दिया है उसे भी दिया नहीं जलाया जाता। ऐसे सजीवन मूर्ति के बिना ज्ञान प्राप्ति किसी को संभव नहीं है। जिसको ऐसी जरूरत महसूस होती हो, आवश्यकता लगती हो, इसके लिए मेरा काम होगा, तो कैसे कैसे भी उसको ढूंढे बिना नहीं रहेगा। वो बात सबसे पहले जब हमारी समझ में आई ऊपर देव के वचन के माध्यम से, तो बात तो कहते हैं वो 100% सही है। तो फिर हमने देखा उसको कोई सत्संग नहीं काम का, लेकिन हमको अभिप्राय कैसा खड़ा हो गया कि ऐसा सजीवन मूर्ति इस विश्व में विद्यमान हो तो हम सातवां आसमान में से उसको पकड़ लेंगे, वहां जाएंगे, और जरूरत लगे तो सातवां पाताल भी जाएंगे। ऐसा विकल्प आया था, लेकिन उसका पता निकाल लेंगे। क्यों? आत्मज्ञान की जो रहस्यभूत बुद्धि है वो तो उसके बिना समझ में आने वाली नहीं है। उतना उतना जोर से विकल्प आया था जबकि परिस्थिति कोई बिल्कुल नहीं थी, कहीं भी आने जाने की ऐसी परिस्थिति में इतना जोर से विकल्प आया था। मतलब आवश्यकता कितनी मालूम पड़ी, ऐसी आवश्यकता मालूम पड़ती है तब परिणाम इसकी खोज के पीछे सहज चालू हो जाते हैं और लगे ही रहते हैं। उस परिणाम से जो कर्म बंधते हैं उसके फल स्वरूप तो सजीवन मूर्ति की प्रत्यक्ष योग की प्राप्ति हो जाती है। ये कुदरत की व्यवस्था है कि आप चावल बो चावल मिलेगा, ज्वार बोने से ज्वारी मिलेगा, गेहूं बोने से गेहूं मिलेगा, कुदरत की व्यवस्था है। बगल बगल में भी जो बीज बोया है वही उतर आएगा, दूसरी कुछ उसमें मिक्सर होने वाला नहीं, वही पानी वही खाद वही प्रकाश सब वही है, लेकिन जो बीज है वही उगेगा। वो सजीवन मूर्ति की पहचान होने से, पहचान उनकी परिणति से होती है। किसको होती है? कि जिसको अपना आत्मकल्याण का पूर्ण शुद्धि का ध्येय निर्धार निश्चय दृढ़ निश्चय परिपक्व निश्चय हो जाने से, वो एक बात। दूसरी बात, उस सजीवन मूर्ति के समागम में अपने लायक जो भी उपदेश मिले उनका अमलीकरण, फौरन अमलीकरण, तुरंत अमलीकरण का वृत्ति रहना, प्राप्त उपदेश को अवधारण कर लेना, अंगीकार कर लेना, सिर्फ सुनकर के संतोष नहीं पकड़ना, मेरे लायक ये बात है अभी भी मेरे को स्वीकार कर लेना। दूसरा, ऐसे योग्यता में आने के पश्चात अब अंतर्मुख होने की वृत्ति रहा सकती हो, इसको अंतरात्म वृत्ति कहते हैं कि अंतर्मुख कैसे हुआ जाए। हमको प्रत्यक्ष समागम में दो बात समझनी है तो उस विषय पर वो आतुर होता है। कितना आतुर होता है कि टकटकी लगाता है, ये बात कहां से आती है, कैसे आती है, किस प्रकार से आती है, ये बात सही होने से आए बिना रहते नहीं। तब उसको सिर्फ बात पकड़ने में नहीं आती है, जिस विधि पूर्वक वो बात चलती है वो विधि परिमित दिखने में आ जाता है तो पहचान हो जाती है। तो पहचान हो जाती है तो उसके हर वचन में विश्वास प्रती खातरी होती है कि मेरे लिए तो ब्रह्म वाक्य है, तो उसका फर्क नहीं है। तर्क और शंका का कोई अवकाश नहीं है। कभी ऐसी बात बनती है कि पूर्व संस्कार से बुद्धि स्वीकार नहीं करे तो क्या करना, तो बुद्धि को दो थप्पड़ लगा करके लगा देना कि तुम इस तरह से मत चलो। पहचाना ही उनको इस तरह से होता है, यानी मेरी पहचान वाली बात है वो सही है और जो दूसरी बात खड़ी होती है वो मेरी गड़बड़ से होती है। प्रत्यक्ष मेरे को नुकसान का कारण है, जोर से हटाएगा थप्पड़ मारने की बात, जोर से हटाएगा। थप्पड़ को क्या बोलते, हिंदी में चाटा बोलते हैं, चाटा बोलते थप्पड़ बोलते हैं। तो उसके वचन की प्रतीति आती है, वचन की प्रतीति माने क्या, कि गर्मी के दिन का 12 बजा हो फिर भी बराबर मध्यान से गर्मी को फेंकता हो, और सजीवन मूर्ति ऐसा कहे कि ये तो अमावस्या की अंधारी रात है, मानना कि नहीं मानना, बुद्धि तो नहीं स्वीकारेंगे। लेकिन कभी ऐसा कहे तो किसका कुछ परमार्थ होगा, हमारा ध्यान जाना चाहिए आज्ञा और विश्वास हो रहा है। बात तो कुछ उत्पतांग है, सीधे साधु तो है नहीं, पर हमारे में जितनी अकल है उतनी अकल नहीं है वो बात तो कभी भी कहीं एक कोने में भी आनी नहीं चाहिए। तो फिर ऐसा कैसे कहा होगा, कुछ इसके पीछे तो ऐसा कारण होगा जो फिलहाल हमारी समझ में नहीं आ रहा है, तो समझने की कोशिश करो। इन जैसे ऐसा बना था, गूगल ने बोला कि सोने का क्या भाव है, क्या बोले पीछे सोने का क्या भाव है, तो किसी ने बोला कि 4600 है, तो कोई मैंने नहीं साहब 4650 चल रहा है, तो लगभग 10 ग्राम का है, लगभग तोले का तो 5000 हो जाता है, ऐसा करके ऐसे जिसकी समझ में था वो बात बोलने लगे। गूगल सुनने लगे थोड़ा बहुत आश्चर्य तो हुआ कि ऐसी करता तो कभी निकलते नहीं कि समय का भाव जाए। तो फिर उन्होंने बताया कि सोने का भाव माने सोने का स्वभाव क्या है वो हम कितना चाहते हैं, क्योंकि हमें कैसा भाव है उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे तो कोई अलंकार दागिना बनाने का है नहीं। हमको बोले कि हमारे तो बैठी छे नहीं के हमारे के राजे नौ बजे में बनावाने होगी, तो काठियावाड़ी में बोले हमारा हनाना भाव पूछो नहीं जरूर बोले
हमको तो उसका स्वभाव क्या है, तो मतलब क्या है कि कोई भी बात में स्वभाव दृष्टि से वो देखते हैं। भूगोल का प्रश्न पूछा कि पृथ्वी पर पानी का क्षेत्र ज्यादा है या जमीन का है, तो जो भूगोल जानते थे सबने बताया सब पानी ज्यादा है जमीन कम है, तो नहीं पानी के नीचे भी जमीन मिली। तो क्या कहना चाहते हैं कि किसी भी विषय के गहराई में आप जाओ, सामने प्रश्न आता है तो ऐसे सीधा ऊपर से जवाब मत दो, इस विषय की गहराई क्या है। जो समुद्र के नीचे जमीन है लेकिन ज्ञान समुद्र के नीचे कोई तलवा नहीं है, वहां कहां से कहां लेंगे, अपना तो ज्ञान का सागर है उसमें वो बहुत कम लैस है, उसका कोई तलिया नहीं है, तो ये समुद्र तो कुछ नहीं है, ज्ञान सागर के आगे वो समुद्र तो कुछ नहीं है। हमको पूछा कितना गहरा होगा, तो वो समुद्र तो 5.5-6 माइल से ज्यादा गहरा नहीं है, जो हिमालय है वो वर्टिकली 5.5 मिल से करीब है, सबसे जो बड़ा ऊंचा पर्वत है अपने पृथ्वी में वो हिमालय है, और सबसे बड़ा जो समुद्र है वो पैसिफिक अटलांटिक महासागर है जो अमेरिका के आगे पीछे है, वो सबसे बड़ा है, लेकिन उसको वर्टिकली डेप्थ है वो 5.5-6 माइल है, तो खंडा भी इतना है और टेकरा भी इतना ही है, तो वो बात नहीं है, ज्ञान सागर को तल्ली तल्ला नहीं है, नहीं तो कितने भी जाओ। तो सीधी साधी बात के पीछे कुछ कई बातें समझने लायक होती है, इसके लिए ऐसी तथा कभी चलती होती है, तो उसमें आज्ञाकारिता जो है वो प्रधान रूप से होती है, तो स्वीकार आता है, मन बुद्धि स्वीकार नहीं करते, उसको कहते हैं वचन की प्रतीति। उस वचन को आज्ञा समझ करके रुचि पूर्वक इसका अनुसरण करना, सामान्य विकल्प को भी आज्ञा समझ करके इस विकल्प की पूर्ति हो जाए, ऐसे तत्परता आ जाती है, मामूली विकल्प दिखे लेकिन उनको बोले कि नहीं इनको विकल्प आया तो ऐसा ही रहना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरी दरकार है जिसके उपकार से या निमित्त तत्व से अनंत लाभ होता है, कितना लाभ होगा तो कितना होगा, तो अनंत जन्म मरण मिटेगा, अनंत दुख मिटेगा और अनंत सुख की प्राप्ति होगी, ऐसा अनंत लाभ का निमित्त को देख करके उस निमित्त के प्रति भी कितनी दरकार आती है, तो इसका एक विकल्प भी उसको आज्ञा के रूप में दिखने में आता है, उपेक्षा नहीं होगी, छोटे विकल्प की मामूली विकल्प की भी उपेक्षा नहीं होगी। तो बात तो निमित्त परक है, खुद को आज्ञाकारिता कितनी आ गई, वो एक सद्गुण बड़ा आ गया उसकी बात है, तो दिखाई जाती है वहां से तो बहुत बड़ा सद्गुण है, आज्ञाकारिता आने से अनेक प्रकार के विभाव परिणाम छूट जाते हैं, क्योंकि तो आज्ञा को अनुसरण करने को जाता है तो इसके सामने जो कसाय है उसको छोड़ना पड़ता है, और सहज मात्र में छूटता है, सहज मात्र में छूट जाता है, मेरे को तो ये आज्ञा है, फिर कुछ देखने की बात नहीं रही, तो प्रकृति इसके सामने खड़ी होगी तो उसको हटाएगा, वरना प्रकृति को जितना आसान बात नहीं है, बाहर के शत्रु को जितना आसान है भीतर के शत्रु को जितना आसान नहीं है। उसको उसके वचन को आज्ञा समझ करके रुचि पूर्वक उसका अनुसरण करना, उसको कहते हैं आज्ञा रुचि। और स्वच्छंद निरोध भक्ति, स्वच्छंद निरोध में क्या है कि अपनी मनमानी कुछ करना नहीं है, इतना बहुमान करे कि जिसमें अपना कोई मनमानी बात, कोई पूर्वग्रह नहीं, कोई पूर्व का अभिप्राय का पक्कड़ नहीं, सब छोड़ देकर क्लीन स्लेट हो जाता है। स्वच्छंद निरोध होता है तो क्लीन स्लेट हो जाता है, जब वो भक्ति करता है उसको भक्ति भाव आता है उपकार बुद्धि से, तो उनको ज्ञानी कहते हैं कि सम्यक्त्व है, इस भूमिका का सम्यक्त्व है। क्यों? तो प्रत्यक्ष कारण है, ज्ञानी को वो प्रत्यक्ष लिखने में आता है कि उसको सम्यक हो जाएगा, तो कारण में कार्य को देख रहे हैं। राजा को लड़का हुआ तो राजा के रूप में देखते हैं, इसमें बीच में मर जाएगा वो विकल्प नहीं आएगा क्या क्या अभी जन्म हुआ, राजगादी पर तो 20-25 साल के बाद आएगा, तो बीच में मर जाएगा तो वो विकल्प नहीं आएगा क्या? तो पुण्य लेकर के आया है राजा, क्यों आया है तो राजा बनने के लिए आया है, ऐसा नहीं आया विकल्प भी नहीं आएगा। पुण्य वाले को विपरीत विकल्प नहीं आता है, चक्रवर्ती को भिख मांगने का विकल्प नहीं आएगा, अरे श्रीमंत सेठिया को भिख मांगने का विकल्प नहीं आएगा। जो पुण्यवंत है, जिसका उदय है, उसको ऐसा विकल्प आता है कि कल अपने को सड़क पर पैसा पैसे के लिए भिख मांगना पड़ेगा, रोटी की भिख मांगना पड़ेगा, ऐसा विचार आएगा क्या है? तो बड़ा कराबर चलाता उसको विचार आएगा कि हमें इसको दातन बेचना पड़ेगा है? तो भागरे लोग देखते नहीं जाना, तो मेरे को फुटपाथ फुटपाथ पर खड़े रह करके दातन मिलने का होगा, निकल तो नहीं आएगा। तो पुण्य का ऐसा प्रभाव होता है, तो यहाँ तो ठोस कारण है, योग्यता का ठोस कारण, ऐसी योग्यता में जीव कभी आया नहीं, अनंत काल में मोक्ष मार्ग तो नहीं मिला, लेकिन मोक्ष मार्ग के लायक इस प्रकार की जो योग्यता है, ये प्राथमिक योग्यता है, वहां तक भी नहीं पहुंचा। अगर यहां तक भी पहुंच जाए ना तो उस भाव में नहीं तो दूसरे भाव में उस मोक्ष मार्ग को पकड़ लेगा, आसानी से पकड़ लेगा। ऐसी ठोस बात देकर के कृपा जी ने उसको सम्यक दर्शन पहला संकेत बोला है, ये प्रथम संकेत है। और स्वच्छंद निरोध भक्ति में जो मार्मिक बात है वो है कि भक्ति का अहम नहीं छिड़ता, वरना द्रव दृष्टि सम्यक दृष्टि परमार्थ सम्यक दृष्टि उत्पन्न होने के पहले जो भी परिणाम में सुधार होता है उसका अहम हो जाता है कि मेरे के पहले भाव ऐसे थे अब नहीं है, पहले से मैं इतना सुधर गया, पहले वो भूल होती थी अब नहीं होती, पहले वो कषाय होता था अब नहीं होता है, पहले ऐसा होता था अब नहीं होता है, इसका अहम भाव आ जाएगा, संतुष्ट आ जाएगा। वो बात स्वच्छंद निरोध भक्ति वाले को नहीं आएगा, जबकि इसकी भक्ति उत्कृष्ट होगी। सर्वोत्कृष्ट भक्ति होने के बावजूद भी उस भक्ति को गिने जाने कि मैं कुछ नहीं करता, मैं क्या करता हूं, इसके उपकार क्या, कि मेरी भक्ति क्या चीज है, कुछ नहीं, मुझे नहीं गाएंगे। और इसे स्वच्छंद निरोधता हो ये बिना होगा थोड़ा और गिनेगा ज्यादा, अति परिणामीपना कैसे, क्या कहते हैं अति परिणामीपना, मैंने ओवर एस्टिमेट जो है उससे ज्यादा उसका एस्टिमेट हो जाना ये बनता है। वो सत्संग निरोध भक्ति नहीं होता। ऐसे परिणाम परमार्थ समत्व का प्रत्यक्ष कारण होने से इस भूमिका का जो बीजभूत समत्व कहने में आया है तो बीज है। मोक्ष का मूल सम्यक दर्शन है, लेकिन मूल का भी कोई बीज होता है तब मूल उसमें से निकलता है। ज्ञानी कहाँ तक गए? तो मोक्ष का मूल सम्यक्त, लेकिन सम्यक्त का बीज क्या? क्योंकि तो सजीवन मूर्ति की पहचान कि बीजभूत सम्यक्त है, तो मोक्ष का बीज हो गया। निर्विकल्प सम्यक दर्शन है मोक्ष मार्ग का, तो मूल है इसका, लेकिन इसका बीज कोई और है। वो बात आत्मसिद्धि शास्त्र के इस गाथा के आशय में है। ये गाथा का आशय है, 17 गाथा का वो आशय है। इस गाथा के पीछे उतना बड़ा आशय छिपा था, वो बात अगर सुभाष भाई के निमित्त से 751 पत्र में नहीं निकलती तो कोई समझ नहीं सकते इस आशय को। ऐसी बात है, पद तो लिख दिया लेकिन इसके पीछे रहस्य था तो उनके हृदय में था तो निकाला, सुभाष भाई ने वो निकाला। ऐसे हम पद पढ़कर के प्रसन्न तो बहुत है, बहुत राजी हो गए हैं, फिर भी हमको और कुछ बातें उसमें से खोजनी है। आप संकेत की बात 3-4 बजे कर रहे हैं कि ये क्या क्या बात है, कुछ लिया तो जो पेट में था वो निकाल दिया। जिसको सजीवन मूर्ति की पहचान होती है उसको निष्पक्ष पने से अपने परिणाम और दोष का अवलोकन का प्रयोग चालू हो जाता है। ये सहज है। पहचान के पीछे ये परिस्थिति ऑटोमेटिक पैदा हो जाती है, तो बहुत मध्यस्थ हो जाता है और अपने परिणाम को तो देखने लगता है, चलते वो परिणाम को देखता है और दोष को भी अच्छे तरह देखता है। तो उस वक्त क्या होता है कि जो भी परिणाम में विभाव रस है वो इसी वक्त टूट जाता है। चलते हुए परिणाम में रस टूट जाता है, रस में रस हो जाता है। सबसे बड़ा फायदा तो वो है क्योंकि रस से ही विभाव रस से ही कर्म बंध है। तो चिकना परिणाम है, जितना विभाव रस तीव्र उतना परिणाम चिकना, जितना परिणाम में चिका ज्यादा उतना बंध भी तीव्र, आकरा बंध है वो। पहला फायदा तो वो है। दूसरा, परिणाम देखने की प्रैक्टिस है, उस दोष की गहराई में फिर ज्ञान चलता रहता है, तो उसके पीछे क्या अभिप्राय था वो पकड़ने में आता है। चलो लोभ का परिणाम हुआ तो दोष तो जरूर है, मुझे पकड़ने में भी आया तो मुझे लोभ हुआ, लेकिन इसके पीछे मेरा अभिप्राय क्या था? तो पकड़ने में आएगा कि आधार बुद्धि थी, आधार बुद्धि के कारण से लोभ खड़ा हुआ था। तो लोभ को, लोभ का तरस टूटेगा लेकिन अभिप्राय देखने से अभिप्राय तोड़ने का भी प्रयोग चलेगा। तो मूल में से कैसे वो लोभ की अयोग्यता मिटे इस प्रकार की प्रक्रिया में वो प्रायोगिक प्रक्रिया में चला जाएगा। उपयोग शब्द ज्ञान ने दर्शन देना पर्याय ने लागू करे शास्त्र में ताकि बधा गुणों ना परिणाम न परिणाम के भाव के पर्याय के हालत के दशा के ज्ञान ने दर्शन ना पर्याय जो उपयोग करा मारे दर्शन जो सूक्ष्म वैज्ञानिक चर्चा दुकान से तुम जो पकड़ा पड़ा था ज्ञान उपयोग पकड़ा है तुम पकड़ा है तुम जाए तुम जो उसे पाए तुम जिस कर उपयोग से चालता परिणाम पर उपयोग जाए तो उपयोग जागृति को सूचित करता है। क्या है जिसको जागृति है वही चलता परिणाम को देखेगा वरना बाद में पता चलेगा परिणाम चले जाने के बाद क्या तो कहीं ना कहीं उसका भी पता नहीं चलता है कि क्या चल गया अंधेरे में चलता है। बहुतों का ऐसा होता है कि कैसे कैसे परिणाम हो जाता है खुद को मालूम नहीं होता और कुछ विचार करे तो बाद में मालूम पड़ता है लेकिन जागृति आती है तो उसी वक्त पकड़ने में आता है। उसी वक्त पकड़ने में आता है तो वो बच जाता है बाद में पकड़ने में आने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो तो नुकसान कर चुका है वो तो हो गया वो हो गया वो नहीं हुआ ऐसा बनेगा नहीं अंदर होगा नहीं बन है मुझे तो बात खत्म। इसलिए इस प्रयोग के दौरान अपना विपरीत अभिप्राय मिट जाता है और अविपरीत अभिप्राय का गढ़ना होता रहता है ऐसा बनता है। तो अभिप्राय का बहुत बड़ा रोल है परिणमन में। परिणमन में के पीछे अभिप्राय का बहुत बड़ा बैकिंग तो इसका होता है पार्श्वभूमि तो वो है बैकग्राउंड तो वो है जिसके ऊपर परिणाम खड़े होते हैं। तो मुमुक्षु की भूमिका में विपरीत अभिप्राय का मिटना और अविपरीत अभिप्राय का उत्पन्न होना यही इस भूमिका का पर्याप्त कार्य है। ये अवलोकन के प्रक्रिया में अनेक प्रकार के विपरीत अभिप्राय मिटते जाएंगे ये बहुत बड़ा कार्य है प्रैक्टिकल साइड में ना होता जाता है। पहले तो बात तो है कि बहुभाव लोगों को तो कषाय तो दिखता है लेकिन कषाय के पीछे अभिप्राय क्या है वो समझ में नहीं आता है। कितनी गहराई तक ज्ञान जाता नहीं स्थूल होता है ज्ञान। जो ज्ञान अभिप्राय को पकड़ेगा तो अभिप्राय की भयंकरता जो है वो उनके समझ में आएगी। तो उस विषय का ज्ञान ही उसको तोड़ता है। सिद्धांत ऐसा है कि ज्ञान ही एक मोक्ष कारण है। संस्कृत में वैसे बहुत सूत्र है समय सार में ज्ञान ही एक मोक्ष कारण। तो मोक्ष कैसे है तो मोह मिटने से है तो ज्ञानात मोहम प्रणश्यति। मोह को मारने के लिए के ज्ञान ही चाहिए ज्ञान के सिवा कोई उसको मार नहीं सकता। प्रकृति छूटती नहीं लोगों के प्राण में प्रकृति हारे जाए प्रकृति को मारने वाला भी ज्ञान है जीत सकता है। वो तो फिर रिजल्ट आ गया तो बाह्य त्याग हो जाएगा मतलब वृत्ति में ना त्याग हो जाएगा यार हो जाएगी नानात मोहन प्रमुष्य, नाम से मोह का नाश होता है।
अभिप्राय
ज्ञान में समझ नहीं कि अभिप्राय नहीं टके
અભિપ્રાય
કે કારણે આપણી અભિપ્રાય છે સમજવામાં આવશે અને એ વિપરીત અભિપ્રાય ઉઠતા જશે। વિજ્ઞાન જ સાધન છે। બહારમાં પણ કોઈ વિષયનો અભિપ્રાય બદલાય છે તો એની સમજણ કોઈ પણ બદલાય છે। इस प्रकार से चारों से यथार्थता उत्पन्न होती रहती है। अवलोकन के प्रैक्टिस से चारों पर चारों ओर से यथार्थता उत्पन्न होती है। ये यथार्थता आगे बढ़ करके डेवलप होकर के सम्यक्त्व में परिवर्तित हो जाती है। यथार्थ समझ सम्यक ज्ञान को पैदा करने वाला है। कारणकारी की संधि है। इसलिए सम्यक्त्व के प्रकरण में इसके कारण की चर्चा है। अतः आत्मार्थ को यथार्थ परिणमन कारण है और सम्यक्त्व कार्य है। परिणमन में यथार्थता कारण है और सम्यक्त्व उसका कार्य है। ये आत्मार्थ की भूमिका में यथार्थता आनी चाहिए। उन्नीस 20 साल की उम्र में हमने ये पांडुरंग शास्त्र को सुना। पांडुरंग आठवले दुबई जाते हैं, थाना में इसका बड़ा आसन है। तो बहुत लोग उनके पीछे हैं। तो दिल्ली के घर में एक बड़ी शिविर लगाई और सारी इंडिया से जुड़े उनके हवा से उनको बुलाए हैं। कितने लोग इकट्ठे हुए मालूम है? 15 लाख। 15 लाख लोग आए। और इसकी व्यवस्था हुई खाने की, पीने की, ठहरने की। 15 लाख मनुष्य भाग्य मिल करके सब होते हैं। उनकी ठहरने की, खाने की सब व्यवस्था कैसे की होगी? तो दो महीने पहले की बात है, 6 महीने पहले की बात है। क्लास में ऑरेटर है। महाराष्ट्रीयन होने के बावजूद भी गुजराती इतना अच्छा प्रेजेंटेशन करते हैं कि मालूम नहीं पड़े कि महाराष्ट्रीयन बोलता है। वेद का अध्ययन किया है बनारस में तो संस्कृत में तो फ्लुएंट स्पीच है, इतना फाइन संस्कृत में। और एजुकेटेड आदमी है, इस जमाने का ग्रेजुएट है अपने जमाने का। तो इंग्लिश भी स्पीच बहुत अच्छी है। अब्रॉड में जाता है तो इंग्लिश में अपना स्पीच देता है। सुनने वाले को तो सब हजारों के बीच में और पिन ड्रॉप साइलेंस कर दे। बहुत अच्छा प्रभुत्व है वाणी को और एक तरह फाइन है उसका। अभी कुछ लौकिक कार्य में लग गए हैं। बाकी हम जब जाते थे तब प्योर तत्व ज्ञान की बात करते थे। इतनी शब्द गीता पातंजल योग दर्शन ऐसे दो तीन चीजें हम सुने हुए तो तत्व ज्ञान का रस वहां से चालू हुआ। ये भी एक दुनिया है। लौकिक कार्य करना बनस छोड़ बाबा દેશમાં વરસાદ ઓછો છે, વરસાદ આવવામાં વનસ્પતિ કારણ છે, લોકો ને પકડાવી દે, આ તો આ તો નેતા છે તો દોરનાર છે, માટે તો બધા દોરાઈ જાય. તો કે છોડ ને રણ છોડ છે, છોડ ને રણ છોડે, રણ છોડ મને શ્રી કૃષ્ણ. લાખો ની સંખ્યામાં લોકો છોડ ઉગાડે છે અને એના આખા અભિયાન ચાલે છે, પોતે હાજર રહે છે, હજારો માણસો પોતાને લાગી જાય છે. પછી બહુ સરસ ઉર્વાળા નામ આપે છે, મોટા મોટા ઋષિ મુનિઓના નામ આપે છે, આ ફલાણો વન છે, આ ફલાણો ઉપવન છે, કોઈ જાતનું બ્રેન છે લોકોને તો કોઈ જરૂર ના જોઈએ. જુકતી હેકાને વાળા ચાહીએ. અત્યારે તો ઘણું એ બધું જમાનામાં એવું કઈ નતું, બહુ પ્યોર, બહુ સરસ એટલું ફિલોસોફિકલ લેક્ચર રહ્યું. અને ચાલતા સંપ્રદાયમાં રૂઢિ હોય એને એવી રીતે મશ્કરીથી ઉડાડતા હતા. માધવબાગમાં લેક્ચર કરે મુંબઈમાં, અને માધવબાગમાં લેક્ચર કરે અને ટીકા કેવી રીતે કરે કે જો આ માધવબાગમાં લક્ષ્મીનારાયણની મૂર્તિ છે. લક્ષ્મીનારાયણ એટલે શું? કે લક્ષ્મીજી એટલે પૈસા, અને નારાયણ એટલે વિષ્ણુ. શું એટલે એવી જ માનામાં કાણા વાળો તાંબાનો પૈસો સરકારે કાઢેલો, તો કેવી મશ્કરી કરે કે જે લક્ષ્મી અને નારાયણ સાક્ષાત છે એટલે એના પતિ છે લક્ષ્મીના, એની અમે તમે કાણા વાળો પૈસો ઉડાડીને ફેંકો છો. આ તો કઈ રીત છે પૈસા ફેંકવાની પદ્ધતિ છે એ સંપ્રદાયમાં, તો ભગવાનની મૂર્તિ આગળ લોકો પૈસા ફેંકે અને સિક્કા ખાસ ફેંકે, ઓછામાં જો પૈસા નાખે એ તો બહુ મુશ્કેલી કરે. આ શું કરો તમે ભિખારાની અમે પૈસા નાખો, ઠીક છે, આ તો લક્ષ્મી રહે છે અમે પૈસા નાખે. પછી એમ કે કે તમે એનો ભોગ ધરાવો છો, છપ્પન ભોગ, સારા સારા મિષ્ટાના, તે 32 જાતના શાક ને 33 જાતના મિષ્ટાન ભોજન. પછી પછી જમાડ્યા પછી પાનબીડા આપો છો, નાગરવના પાનનો અંદર સોપારી વોપારી નાખીને લગન લગન લગાડીને વરસ વરસ ખોલીને. સારું છે કે સિગરેટ નથી પીવડાતા, ભાવ ઉડાડે, ચાલતી રૂઢિ કરી પ્રહાર કરે, એ જ મંદિરની જગ્યામાં બેસે ને ઇન્સ્ટિટ્યુટ જ, અને પ્રહાર કરે એને આવ્યા છે કોઈ બોલી શકે ને ક્યાં, નહીં તો બીજે દિવસે પૂજારી ઉઠાડી મૂકે આવ્યા એટલે આ લેક્ચર નથી કરવાનું, તો મારા ઘરે જઈને. એની પાછળ બહુ મોટી મોટી પાર્ટીઓ છે પુસ્તક મુંબઈમાં હાથમાં આવ્યું છે, ટોપાલ દેવાના પત્રોમાં એક જગ્યાએ આવે છે, મહાત્મા નિશ્ચલદાસ દીકરત પુસ્તકનું નામ છે, તત્વજ્ઞાન ઉપર એક પુસ્તક છે, વિચાર સાગર, વિચાર સાગર નામનું પુસ્તક છે. આ બધું ઉત્તર હિન્દુસ્તાનના કોઈ મહાત્મા થઈ ગયેલા ગુજરાતી ભાષાંતર આપવાનું, એમાં વિચારોને અને પરિણામોની બહુ વાતો લખેલી છે. એ તો બહુ સમજમાં ન આવ્યું, પણ એક ખ્યાલ આવ્યો કે આ ભાવોની પણ એક દુનિયા છે. બહાર જે દુનિયા દેખાય છે એમાં ભાવોની પણ અંદરની એક દુનિયા છે, એની સમજવા જેવી છે. અને એના ઉપરથી એક વિચાર આવ્યો જે સમ્યક જ્ઞાનનો વ્યૂ પોઈન્ટ છે, એ વિચાર તે દિવસે કરવામાં આવ્યો કે જો બુદ્ધિ આપણામાં હોય તો એ બુદ્ધિ એવી હોવી જોઈએ કે કોઈ પણ પ્રસંગને, કોઈ પણ વાતને, કોઈ પણ વસ્તુને રાઈટ એંગલથી જોઈ શકે. રાઈટ એંગલ કહો કે સમ્યક વ્યૂ પોઈન્ટ છે, सम्यक दृष्टिकोण इन चर्चा करते हैं। अभी कोई बात आपने हासिल कर ली बुद्धि वाला मानस तो क्या गोटू न खाए। जो तुम्हें कोई पण बात ने साची दृष्टि थी मूलवी सकता हो जो सकता हो तो तुम्हें गोथू न खाए। नहीं तो गमे क्या गोथू खाई जाए बुद्धि वाला मानस ये विचारते थे 1920 में बराबर थे। ત્યાર પછી અહીંયા સામે રામકૃષ્ણ વિવેકાનંદના અમેરિકાના લેક્ચરો એના કેટલાક ભાગો મેં વાંચ્યા એમાં એ ખોજ રહેતી હતી। ગીતાનું તો ઘણું યાદ હતું, ઘણા શ્લોકો ઘણા અધ્યાયો યાદ હતા, પણ એમાં એ પછી ખોજ રહેતી હતી ક્યાંય મોંમાં તો હાથમાં નહોતો આવતો। એટલે કૃપાળુના ગ્રંથમાંથી જયારે સમ્યક્ત્વ અને સમ્યક દર્શન ને સમ્યક જ્ઞાનનો વિષય ચાલવા માંડ્યો આપણો દ્રષ્ટિકોણ રાઈટ જ હોવો જોઈએ, રોંગ જવો જ ન જોઈએ, એ કેવી રીતે થાય અને એની એની ચાવી શું છે એ ગોતતો હતો એ આમાંથી હું મેળ ખાઈ ગયો। ઘણું ખેડ્યું છે આ ક્ષેત્ર, આ લોકોએ ઘણું ખેડ્યું છે એમ છે આમાં તો ભગવાનની બુદ્ધિનો માપ ઉતરી જાય, પાણી ઉતરી જાય એટલું બધું આ લોકોએ ખેડ્યું છે, એટલું એનું ઊંડાણ દેખાણું પછી તરસ પડે એટલે આપણે બરસ પ્રમાણે ઊંડાણમાં જોઈએ પણ અંદાજ આવી ગયો કે આત્માર્થીની ભૂમિકામાં યથાર્થ પરિણામ કારણ છે અને સમ્યક્ત્વ એનું કાર્ય છે। ઇસ પ્રકાર કે યથાર્થ પરિણામ મેં જબ આત્મ સ્વરૂપ કી પહેચાન હોતી હૈ કે ભાવો કા અવલોકન સે ભાવો કા પરિચય હોતા હૈ ઓર પરિચય પહેચાન કા કારણ હો જાતા હૈ ઉસમેં જ્ઞાનમાં સ્વભાવ ભાવ મૌજૂદ હૈ સભી પ્રકાર કે વિભાવો મેં વિભાવ સ્વભાવ મૌજૂદ હૈ બસ બાયફર્કેશન હો જાયેગા ચેતવણી અગર અલગ અલગ હો જાયેગી અગર પ્રેક્ટિસ બરાબર હોય તો અવલોકન થી તો ઇસ પ્રકાર કે યથાર્થ પરિણામ મેં જબ આત્મ સ્વરૂપ કી પહેચાન હોતી હૈ તબ સ્વરૂપ કા ભાવ ભાષણ સ્વરૂપ કા ભાવ ભાષણ દોરાન સ્પષ્ટ રૂપ સે સ્વરૂપ કા નિશ્ચય હોતા હૈ કે મેરા સ્વરૂપ એસા હી હૈ સ્પષ્ટ ઇસ પ્રકાર કે નિર્ણય કે સાથ નિશ્ચય બલ ભી પ્રગટ હો જાતા હૈ નિશ્ચય કે સાથ નિશ્ચય બલ ઇસકો કહેતે હૈ કે જ્ઞાન બલ ઇસકો કહેતે હૈ કે જ્ઞાન કે કારણ સે ઉત્પન્ન હુઆ પુરુષાર્થ ये पैदा हो जाता है। शास्त्र भाषा में उसको चैतन्य वीर्य की स्फूर्णा बोलते हैं। जब स्वरूप का निश्चय होता है तो चैतन्य वीर्य की स्फूर्णा होती है कि जिसके स्फूर्ण मात्र से विभाव की सेना भगने लगती है या विभावों का बाष्पीभवन होने लगता है, क्योंकि बाष्पीभवन में क्या पानी चला जाता है मालूम नहीं पड़ता है। ये भावभाषण और पुरुषार्थ में प्रत्यक्ष लाभ चालू हो जाता है। निश्चय के साथ निश्चय बल प्रकट होता है और अनंत महिमावंत परम पदार्थ परमात्म तत्व निज स्वरूप का उत्कृष्ट महिमा और अभेद रुचि प्रकट हो जाती है। बहुत महिमा आता है जो समाता नहीं है, इतना महिमा आता है, रुचि भी फाटम फाट रुचि उसकी पैदा होती है। उसको कहते हैं कि निज परमात्मा का परम प्रेम प्रकट हो गया है, अब उसके बिना वो रह सकेगा नहीं। अनंत काल से मालूम हो गया कि अनंत काल से तेरा वियोग हो गया है अब तो वो बात चलने वाली है नहीं। ऐसी सम्यक सम्मुख भूमिका परमार्थ सम्यक दर्शन का सम्यक्त्व का अंगभूत होने से सम्यक्त्व का वो प्रत्यक्ष कारण है। इसके बिना किसी को परमार्थ सम्यक दर्शन होता नहीं, मोक्ष मार्ग प्रकट होता नहीं। सम्यक्त्व होने के पहले की पूर्व भूमिका है तो पूर्व की शर्त के रूप में सब्जेक्ट टू कंडीशन ही होता है, अनकंडीशनल होता नहीं है। अथवा उक्त परिणाम सम्यक्त्व का साक्षात्कार कराएगा और अनिवार्य रूप से ये होगा होगा और होगा। फिर उसको सम्यक्त्व लेना नहीं है, जिसको स्वरूप निश्चय हो गया, स्वरूप की पहचान हो गई, उसको सम्यक्त्व लेने को जाना नहीं पड़ता है। सम्यक्त्व सामने से चला करके इसके पास आता है। जैसे हम ट्रेन में क्या बोलते हैं कि अभी हावड़ा आ गया, कलकत्ता है, हावड़ा आ गया कि हम आ गए, ऐसी बात है। अंत में सम्यक्त्व की स्तुति करते हुए यह सम्यक्त्व अनंत जन्म मरण को रोकने वाला हो, अगर कोई अनंत जन्म मरण को रोकने वाला हो तो ये सम्यक्त्व ही है। दूसरा, सम्यक्त्व स्वरूप की भ्रांति को उत्पन्न होने नहीं देता। अपने स्वरूप के विषय में वो भ्रांति है कि मैं फलाना फलाना मनुष्य हूँ और मेरी ये ड्यूटी है, ये भ्रांति को रोकने वाला एक सम्यक्त्व ही है। मैं आत्मा हूँ और मेरा आत्मधर्म और मेरे आत्मा की ड्यूटी वो है। तीसरा, सम्यक्त्व एक ऐसा बलवान योद्धा लड़ने वाला है कि जिससे कि जिसके तेज से सर्वकर्म दूर से ही अपनी पीठ दिखा करके भगने लग जाते हैं। इतना तेजस्वी गुण है तो कर्म तो बेचारे दूर से ही भगने लग जाते हैं। और सम्यक्त्व ही अनंत गुणों का प्रकट होने का मूल कारण है। मोक्ष का भी वही मूल है, पर मोक्ष में जो सभी गुण प्रकट होता है इसका कारण सम्यक्त्व ही है। इस प्रकार से सम्यक्त्व का विषय यहाँ समाप्त होता है।